नारायण विशेष के साथ मुझे विशेष पाठ बजाना, ये अनुभूति यहाँ पक्की हो जाए, क्योंकि नारायण तो उत्तरोत्तर कंपलाओं वाले होंगे। जो फर्स्ट नारायण होगा वो संगम युग का होगा, सेकंड नारायण सतयुग का होगा, तो फर्स्ट नारायण डायरेक्ट बाप से प्राप्ति करने वाला होगा, उसको कोई देहधारी से प्राप्ति नहीं होगी। सेकंड नारायण वो फिर भी देवताओं से प्राप्ति करने वाला होगा, माना राधा कृष्ण। यहाँ अनुभूति तो होनी चाहिए, अगर हम एडवांस में आ गए कि हम किस कैटेगरी के हैं, किसके डायरेक्शन पर चलने वाले हैं। जो डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाला है उसके डायरेक्शन पर चलने वाले हैं, या नर से प्रिंस बनने वाला है उसके डायरेक्शन पर चलने वाले हैं, या दोनों में से एक भी नहीं। जो थर्ड नारायण है सत्युग का, जो कन्वर्ट होने वाला है, और उसके बाद जितने भी नारायणों का नंबर है सब कन्वर्ट होंगे। अपने भारतवर्ष में सात नारायणों को कहीं बैठे में आने वाली आत्माएं बहुत थोड़ी सी होंगी, और वो आत्माएं ज्ञानी तो आत्मा होंगी। ज्ञानी तो आत्मा मन ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान तो सिर्फ परमात्मा से आता है, और बाकी सब मनुष्यों से अज्ञान है। तो जो भी अज्ञान देने वाले हैं, हमारा उनसे डायरेक्ट कनेक्शन है या डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से कनेक्शन? क्योंकि अव्यक्तवाणी में बोला है डायरेक्ट बात, इसमें बच्चों को फूलों को स्नेह का पानी दे रहे हैं, तो डायरेक्ट बात क्या चीज होती है और इनडायरेक्ट बात क्या चीज होती है? डायरेक्ट बाप जरूर वही बाप होगा जो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। हेवनली गॉड फादर माना हेवन की स्थापना करने वाला, गॉड की सिवाय कोई हेवन नहीं बना सकता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना गाई हुई है, लेकिन किसी की स्थापना? ब्रह्मा द्वारा काहे की रचना है? कैसी सृष्टि? सृष्टि में तो नरक भी है स्वर्ग भी है, कैसी सृष्टि की स्थापना? गायन किस चीज का होगा? नरक की स्थापना का गायन होगा या स्वर्ग की स्थापना का गायन होगा? है स्वर्ग की स्थापना का गायन होगा। तो ब्रह्मा द्वारा जिस स्वर्ग की स्थापना होती है वो कौन सा ब्रह्मा हुआ? ब्रह्मा ने तो स्वर्ग छोड़ दिया। तो जब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना गाई हुई है, ब्रह्मा तो सूक्ष्म वचनवासी हो सकता है, प्रजापिता तो प्रजा के साथ ही रहेगा। जब तक 500 करोड़ की प्रजा इस पृथ्वी पर मौजूद है, प्रजापिता का पार्ट रहेगा। तो जब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना गाई हुई है, तो प्रजापिता इस पृथ्वी पर चाहिए या नहीं चाहिए? और चाहिए तो उसकी मालूमात भी होनी चाहिए। अगर मालूमात है तो हम एडवांस ज्ञान में हैं, अगर आज मालूमात नहीं है तो एडवांस नॉलेज में नहीं। इसलिए बाबा ने कहा जो भी आते हैं उनसे फार्म भरवाओ, उस फार्म में उनसे लिखवाओ कि तुम यहाँ किस लिए आए? क्या जवाब देंगे? अगर यहाँ आपसे फार्म भरवाया जाए तो आप क्या लिखेंगे इस प्रश्न का जवाब? क्या आप यहाँ किस लिए आए हैं? एडवांस ना लीजिए। किससे एडवांस ना लीजिए? कौन देता है? जो बाबा देता है वही तो निश्चय आपको लिखते हैं ना, और क्या करना है? जो मुख की कथनी कहते हैं वही करनी में लिख दीजिए। अगर ये बात आप सही कहते हैं कि हम शिव बाबा से ज्ञान लेने आए हैं तो मुख से जो कुछ कहते हैं वो हाथ में लिख दीजिए। इसमें आपको टाइम क्यों लग रहा है? टाइम नहीं लग रहा है? बाबा ने बोला है कि बाबा के सामने अनिश्चय बुद्धि आत्मा नहीं आनी चाहिए। जो भी बच्चे हैं वो निश्चय बुद्धि विजयंती के स्टेज वाले, उनका फाउंडेशन ही 7 दिन की बट्टी में ऐसा पड़े कि श्रद्धा विश्वास से भरपूर हो। अगर सत्वपन के स्टेज में 7 दिन की बट्टी उनकी चलेगी तो संशय बुद्धि का फाउंडेशन रहा ना, और संशय बुद्धि का फाउंडेशन होगा तो जैसे अभी गीत आया, सागर में अमृत भी है रतन भी है और सागर में कचरा भी भरा हो, तो संशय बुद्धि जो होगा वो कचरे को परखने की कोशिश करेगा या रतन निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि बुद्धि में संशय भरा पड़ा है ना पहले से। बुद्धि प्रिया को पैद हुई पड़ी है, इसलिए प्रिया को पैद बुद्धि जो कुछ पहले से सुना सुनाया है उसी के आधार पर चलेगा। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला हुआ है, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों के आधार पर दुर्गति पाई। और दुर्गति की शूटिंग कहाँ से शुरू होती? हर बात की शूटिंग ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में अभी चल रही है। जैसे बाबा बोलते हैं ब्राह्मणी जिज्ञासुओं को ले आती है, अगर कोई अनिश्चय बुद्धि आकर के बैठ गया तो ऐसी ब्राह्मणी को पाप लगता है, इस बात का पाप लगता है कि अनिश्चय बुद्धि को बाबा के सामने क्यों ले आई? क्या पद बनता है? अहिल्या, अहि माने सर्प और ल्या माने ले आई। इंद्र के दरबार में अहिल्या को ले आई, सर्प को ले आई। तो हम बच्चे तो बाबा के बच्चे बनने जा रहे हैं, बाबा से डायरेक्ट प्राप्ति करने जा रहे हैं, और जो डायरेक्ट प्राप्ति करने वाले बच्चे हैं उनकी तो नस्ल नस्ल में बाबा के महावाक्य समाई हुए होने चाहिए। कथनी में ही नहीं, करनी में भी। इसलिए अगतवाल ने बाबा ने बोला वो इस यज्ञ के लिए ब्राह्मण बहुत खौफनाक और खतरनाक है, जिनकी कथनी एक और करनी दूसरी, जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है, वो उस ब्राह्मणों के यज्ञ के लिए बहुत खौफनाक खतरनाक। लेकिन शंकर जी का जो चित्र दिखाया है उसमें ये भी दिखाया है कि उनकी बाजुओं में ही कौन बैठे, आसीन के सांप घुसे बैठे, कि उनको परवाह नहीं होती। परवाह कौन करता है? परवाह वो करता है जिसके अंदर खोट होती है। कमजोर होगा तो उसको परवाह होगी, पावरफुल होगा, महावीर होगा तो किसी से डरने वाला नहीं होगा। सामना करने से कौन डरेगा?
सागर ही होंगे ना। सागर मीठा भी होता है और सागर खारा भी होता है। मीठों के लिए मीठा बहुत होता है और खारों के लिए खारा बहुत होता है। तो परवा वाली नमकीन तो बहुत प्रदेश है। ये फरुखाबाद, मैनपुरी और एटा, यहाँ के लोग तो सारे हिंदुस्तानी विख्यात हो चुके हैं। लेकिन जहाँ जिससे प्रेम कर लेते हैं उस प्यार को निभाने में भी बहुत उत्साह है। तो फरुखाबाद के मालिक की तरफ बाबा ने मुरलियों में कई बार इशारा दिया। फरुखाबाद में मालिक को बहुत मानते हैं। तो क्या दूसरे जो जिले हैं ढेर के ढेर हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में जिले होंगे, क्या वहाँ के लोग मालिक को नहीं मानते? वो मालिक को नहीं मानते हैं? नहीं, ये मतलब नहीं हुआ। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे नेहरू जी इलाहाबाद के थे और इलाहाबाद से हमेशा उन्होंने सीख दी थी, उसका कारण ये है कि जो व्यक्ति जहाँ का वासी होता है अगर वो कोई बड़ी पोस्ट पर पहुँच जाए संसार में तो वहाँ के लोगों को उसका फखर हो जाता है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला हुआ ये इशारा देने के लिए कि फलखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। इससे साबित होता है कि फरुखाबाद का कोई व्यक्तित्व जरूर ऐसा है जिसके बारे में बार बार मुरली में बाबा ने उठाया है, जो भी चुका मालिक बनता है। और ये बात जब फरुखाबाद के निवासियों को पता चल जाती है, मधुबनवासी कौन और फरुखाबादवासी कौन? मधुबनवासी बाबा ने किसे बताया? जो मधुबन में रहे पड़े हैं वो मधुबनवासी हैं, या मधुबन से दूर रहे पड़े हैं और बुद्धि लगातार मधुबन में रही पड़ी है वो मधुबनवासी है? जिन जो बुद्धि से मधु, हमारी तो बेहद की बातें हैं, हमारी कोई हद की बातें तो है नहीं। तो ऐसे ही फरुखाबादवासी का मतलब ये नहीं कि जो फरुखाबाद में बाबा के कंधे पर चढ़कर बैठे हुए हैं वही फरुखाबादवासी है, नहीं। फरुखाबाद का मतलब ही है ऐसी पावरफुल आत्माएं जो फर्र से सारी दुनिया को बाद में खा जाए। फर्र से मन मगरमच्छों का देश है और उस मगरमच्छ पर गंगा की सवारी दिखाते हैं। गंगा कौन सी? जिसका सागर से कनेक्शन वो गंगा, या वो गंगा जिसका सागर से कनेक्शन छूट जाता है, पानी का बहना बंद हो जाता है? अवगत वाणी में बोला है नदी वो जिसका सागर से कनेक्शन, अगर सागर से संबंध नहीं तो नदी नहीं वो नाला है। तो सागर से संबंध कब कहा जाए? संबंध साकार में होते हैं या निराकार और आकार में होते हैं? कैसे होंगे? साकार में ही संबंध होते हैं ना। सम माने समान और बंधन माने बंधन। समान रीति से जो बंधन बांधा जाता है वही संबंध होता है। एक बिल्कुल गरीब हो और एक बिल्कुल रईस हो, लड़का लड़की का संबंध जोड़ा जाता है तो एक बहुत रईस हो साहूकार हो और एक बिल्कुल गरीब घराने की हो तो संबंध है जुटेगा और वो चलेगा नहीं? चल सकता, टूट जाएगा। तो संबंध होता ही है समानता, समान और समीप बच्चे ही बाप के साथ संबंधी बनते हैं, नहीं तो संबंध टूट जाते हैं। तो नदियां वो जिनका ज्ञान सागर से डायरेक्ट साकार में संबंध है वही नदी है। मानसरोवर तालाब है, ज्ञान मानसरोवर बाबा ने मुरली में बोला हुआ है, हंसों का वहां निवास होता है। मानसरोवर जैसी झील स्वच्छ पानी की और कोई नहीं गई हुई, उसमें से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और वो ब्रह्मपुत्र नदी ऊंची ऊंची स्टेज में ही बहती रहती है, गंगा की तरह नीचे गिरकर मैदान में नहीं आती, ऊंची स्टेज में बहते बहते अंत में जाकर के वो भी गंगा में मिल जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी किसको बताया बाबा ने? ब्रह्मा। अब ब्रह्मा कौन? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी माँ। वो कौन? दादा लेखराज। अगर दादा लेखराज को हम ब्रह्मा कहें तो मुरली में तो आया है कि ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, दिल कराती थी, टीचर बनकर के बैठती थी, हम उनके डायरेक्शन पर चलते थे, उनमें से बाबा प्रवेश करते थे। ऐसे ऐसे महाभारती भी है मधुबन के कटे हुए माउंट आबू के, तो ब्रह्मा माता हुई या उसकी भी कोई माता हुई? इससे साबित होता है कि यज्ञ में आज में उस माता की भी कोई माता थी, जो सारे जगत की माता होती है, जिसकी कोई माता नहीं होती, जगत अम्बा जिसकी वजह से। तो वास्तव में ब्रह्मा का अर्थ हुआ जगत अम्बा, जो आज में बच्चे थे वही अंत में भी प्रत्यक्ष होते, आज वाली वही आत्मा है फिर अंत में प्रत्यक्ष होती, रुद्रमाला और विजयमाला की हेड बनती है, तो जरूर उनमें कोई अम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती। अब उसको जगत की अम्बा कहो या ब्रह्मा कहो, माने बड़ी अम्मा, सबकी माँ, असुरों की भी माँ तो देवताओं की भी माँ, क्योंकि दोनों को ठिकाने लगाना, मुक्ति जीवन मुक्ति तो सबको चाहिए, इसलिए मुरली में बोला हुआ है कि परम पिता परमात्मा से विश्व की बाध्यताएं मिलती है जगदम्बा को और जगदम्बा से मिलती है बच्चों को। तो उस ब्रह्मा ने तो चलिए छोड़ दिया, जो तहसीलदारी ब्रह्मा हुआ, वास्तव में अब स्वर्ग की स्थापना की बात है। ब्रह्मा ने भले शरीर छोड़ दिया लेकिन वो ब्रह्मा की सोल ऐसे नहीं है कि वो कार्य नहीं कर रही, वो दो रूपों में अभी भी कार्य कर रही, एक सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करने के माने और दूसरा बीज रूप आत्मा वो भी प्रवेश करती। जैसे परमात्मा शिव ने प्रवेश किया दादा लेखराज ने, तो उनको अपनी स्मृति रहती थी, और मनुष्य आत्मा जब सूक्ष्म शरीर धारण करके किसी में प्रवेश करती है तो सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ता है, जिससे फल ये होता है कि जिस आत्मा में प्रवेश होता है उसका पार्ट गुम हो जाता है, बंद हो जाता है। तो गुंजार दादी में ब्रह्मा की कोई प्रवेश करती है सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ने से उनको अपनी स्मृति नहीं रहती, इसलिए वो कहा जाता है अव्यक्त पार्ट, माने गुंजार दादी की आत्मा अव्यक्त हो जाती है। ब्रह्मा में दादा लेखराज में जब शिव की प्रवेशता होती थी तो वो आत्मा व्यक्त पार्टधारी कही जाती थी, व्यक्त पार्ट था। ब्रह्मा बाबा खुद भी अपने कानों से मुरली ब्रह्मा की सोल सुनती थी तो वो हुआ व्यक्त पार्ट, और गुंजार दादी के द्वारा जो पाठ चल रहा है वो हुआ अव्यक्त पार्ट। लेकिन ब्रह्मा की सोल बीजू की चेज में भी बच्चों में प्रवेश करके इस समय पाठ बजा रही है, उसकी प्रवेशता का पता उसी तरह नहीं चलता जैसे परमात्मा शिव की प्रवेशता का किसी को पता नहीं चलता, कब आई और कब चली गई, क्योंकि ब्रह्मा की सोल भी बाप समान स्टेज को प्राप्त बीज रूप स्टेज को प्राप्त कर जाती है, तब से जब से 100 वर्ष आयु पूरी होती है, ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु पर पूरी हुई माना दादा ले जाएगी 89 क्यों, जब 37 से यज्ञ शुरू हुआ तो 89 से ये आयो 100 साल कैसे पूरी हुई, तो 50 साल पूरे हो गए और 60 साल में प्रवेशता होती है, अलौकिक आयु 100 वर्ष होनी चाहिए ना, तो 100 वर्ष तो आयु पूरी नहीं हुई, नहीं थी थोड़ा सही
थोड़ा
93 मैंने 69 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा 69 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनकी एज 93 थी, 75-76 ये 100 वर्ष की एज का पीरियड हुआ, लेकिन ये राउंड ब्रह्मा की आयु 93 नहीं थी, ब्रह्मा की आयु 47-48 में 50 ईयर की थी, और उसको पढ़ाई पढ़ाने वाले जो थे प्रजापिता प्लस ब्रह्मा यदि के आज में उनको भी डायरेक्शन देने वाले वो 36 और 37 में 100 वर्ष के एज के थे, 50 ईयर 7 साल
तो 76 में उस प्रजापिता ब्रह्मा की एज 76 में 100 ईयर्स पूरी होती है, ब्रह्मा की एज पूरी नहीं होती। अगर पूरी हुई होती तो फिर गिनाइए कि 76 में ब्रह्मा की एज दादा लेखराज की 100 साल कैसे, किस आधार पर, 7 वर्ष हमने किस आधार पर ऐड किए, 7 वर्ष क्यों ऐड किए, 10 वर्ष क्यों नहीं ऐड कर ली, 7 वर्ष का क्या हिसाब। तो हिसाब है 87-88 तक का। क्या हिसाब है कि ब्रह्मा की सोल माना दादा लेखराज की सोल 69 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो 20 वर्ष उनके बताया थे, 19-20 वर्ष एक्यूरेट तो नहीं बताया जाता, 18-20 वर्ष कह सकते हैं। जिस वक्त बाबा ने 1 वर्ष रुंग का दिया था 87, तो वो पीरियड था ब्रह्मा की पढ़ाई पूरी होने का। 50 वर्ष है ब्रह्मा की पढ़ाई, फर्स्ट स्टूडेंट जो बाबा का कौन है, ब्रह्मा माना कृष्ण की सोच, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट। तो वो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट उसकी पढ़ाई का पीरियड पूरा होता है 88 में, और उसी समय उनकी 100 साल की एज पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मुरली में बाबा ने बोला है कि पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे हैदराबाद में, ओम ओम ध्वनि का उच्चारण किया जाता था। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, सुबह 2 बजे बैठ करके लिखते थे और बाप लिखाते, ऐसा महाभारत की मुरली में आया। फिर बाद में उसकी कापियां निकाली जाती थी और क्लास में बैठ के पढ़ी जाती थी। तो मुरली क्लास कराची से निकलती चली आई है, ऐसे जो बाबा ने महाभारत की बोल दिया, इससे साबित होता है कि ब्रह्मा के द्वारा माना दादा लेखराज के द्वारा कराची से पहले मुरली चलाई गई। और बाबा ने ये प्रश्न कर दिया मुरली में बच्चों को समझाने के लिए कि मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है, कोई तो निशानी होगी, नहीं तो कैसे पता पड़े। इसका जवाब भी दिया, जब ज्ञान सुनाते ज्ञान से तो पता पड़ेगा, बाकी चेहरा मोड़ा साधारण व्यक्ति को देख करके तो कुछ पता नहीं चल सकता कि भगवान बोल रहा है या कोई साधारण आत्मा बोल रही है, क्योंकि परमात्मा जब आकर के सुनाएगा तो जरूर ज्ञान भी कैटेगरी होगा, अनोखा ज्ञान होगा, क्योंकि अनोखी आत्मा है, सुप्रीम सोल का ज्ञान भी सुप्रीम होगा, जिसका कोई जवाब नहीं, ला जवाब। तो हम बच्चे की अनुभव कर चुके हैं कि ब्रह्मा के द्वारा जो बाबा ने मुरली चलाई है वो मुरली किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती, दादा लेखराज की नहीं हो सकती। अगर दादा लेखराज की वो वाणी होती तो 66 में जो मुरली में घोषणा की गई कि बच्चे 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, उसका सही अर्थ भी ब्रह्मा बाबा जानते होते, उनकी बुद्धि में भी ये बात बैठ जाती कि विनाश वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ से कुंड से शुरू होगी तो जरूर ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में विनाश या विघटन शुरू होगा 76 से। बाहर की दुनिया को मेमोरेंडम देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने बाहर की दुनिया में मेमोरेंडम दिलवा दिया, इसका मतलब बाबा खुद भी उस बात की गहराई को समझते नहीं थे। क्यों? क्योंकि ज्ञान की वाणी चलाने वाला तो कोई दूसरा था, यानी सुप्रीम सोल। तो सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी चलाई है वो वाणी 36-37 से चलाना शुरू नहीं की। पहले तो मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाने वाले कोई दूसरे थे, उनमें प्रवेश करते थे सुबह और उनमें प्रवेश करके डायरेक्शन देते थे, 10 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। उसके बाद जब कराची में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, फिर हैदराबाद में तो जितना भी संगठन था सत्संग का वो सब बंधन में आ गया,
वो बंधन टूटने का टाइम तब हुआ क्योंकि अति कांत जरूर होता है। तो वो टाइम हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा जब खून की नदियां बहने लगी, और 47-48 में उसी समय वो बांधेली माताएं बांधेली गोपिकाएं सिंध हैदराबाद को छोड़ करके टोलियां बना करके 5-5, 10-10, 15-15 की टोली बनाकर बाबा के पास सिंध हैदराबाद में पहुंची। उस समय से बाबा ने यानी दादा लेखराज ने परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, इसलिए मुरली ने बोला कराची से मुरली निकल के चली आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, तो जब मुरली नहीं चलाते थे तो साड़ी कैसे होगा कि ये ब्रह्मा का पाठ। मुरली किसके संग से चलेगी? मुरली चलाने के लिए तो जरूर ब्रह्मा चाहिए, इसलिए बाबा ने बोला भले ये ब्रह्मा चला जावे तो जितने भी प्रवेश करके वाणी चलाएंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ये मावा की मुरलियों में है तो इसलिए भारतीय परंपरा में ब्रह्मा की भी चार भुजाएं दिखाई जाती है, चार मुख भी दिखाए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कोई एक मुख से ब्रह्मा का पाठ नहीं चला है, ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाने वाली चार आत्मा। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा कहो, चतुर्भुजी ब्रह्मा कहो, या चतुर्भुजी विष्णु कहो, बात एक ही हो जाती है। तो इससे साबित ये हुआ कि ब्रह्मा की एज 88-89 में 100 वर्ष पूरी होती है। इसका प्रूफ क्या? उस मुरली में वह ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। तो ब्रह्मा जब खत्म होगा, ब्रह्मा का पाठ खत्म होगा तो वो आत्मा कौन सा पाठ बजाएगी? ब्रह्मा शरीर छोड़ेगा तो ब्रह्मा का पाठ नरक की दुनिया में होता है या स्वर्ग की दुनिया में होता है? ब्रह्मा का पाठ नरक में होता है स्वर्ग में होता है? नरक में होता है। ब्रह्मा तो पतित है, तो वो पतित तन ब्रह्मा का जब शरीर पूरा हुआ, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को मिलाकर के ब्रह्मा की आयु बढ़ गई 60 वर्ष पहले के। कोई कहे कि तो 36 के बाद काउंट किया जाना चाहिए? नहीं, आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तो गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उस समय से एज नहीं जोड़ी जाती। एज कब जोड़ी जाती है? जब वो बच्चा बाहर आ जाता है तो एज काउंट की जाती है। तो शरीर की भी एज काउंट की जाती है ना, शरीर से ही एज बनती है वैसे नहीं बनती। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि जो पहले का टाइम था 36 से या 47 से पहले का दादा लेखराज का पीरियड लौकिक जीवन का, वो स्थूल शरीर की एज नहीं गिनी जाएगी, वो स्थूल शरीर की भी एज गिनी जाएगी क्योंकि ब्रह्मा की रात भी गई हुई है। ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात, तो क्या अज्ञान काल में ब्रह्मा की एज नहीं गिनी जाएगी? वो भी गिनी जाएगी। तो 100 वर्ष ब्रह्मा की एज इस हिसाब से पूरी होती है आकर के 87-88 में, और ब्रह्मा की आयु जब खत्म होगी तो ब्रह्मा वाली सोल के लिए स्वर्ग शुरू होने चाहिए या नरक? नरक ही बना रहेगा। उस आत्मा के लिए स्वर्ग होना चाहिए, स्वर्ग में ही जन्म लेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि अपने सेंटरों में बहुत पुराने समय से कृष्ण का चित्र लगाया जाता था बड़ा, और उसमें लिखा जाता था श्री कृष्ण आ रहे हैं बहुत जल्दी। हमने समझ लिया बच्चे के रूप में, कोई स्कूल बच्चे के रूप में जन्म लेकर के कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो ब्राह्मणों की संगमी दुनिया ने जो आत्माओं ने विशेष पाठ बजाया है प्रवेश करके दिव्य जन्म लेकर के, उसका गायन शास्त्रों में है। बाकी रामकृष्ण ने जो बच्चे के रूप में सतीपुत्र ने जन्म लिया है उसका गायन शास्त्रों में नहीं। जिस कृष्ण के साथ कंसी और जरासिंह भी दिखाए गए हैं वो कृष्ण सतयुग में होगा या संगम युग में होगा, वो तो संगम की बात है, वही ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चों ने दूसरी तरफ प्रवेश कर दी। इसलिए अगस्तवाणी में बोला है कि ब्रह्मा का पार्ट परिवर्तन हुआ। जैसे तुम बच्चे स्थान चेंज करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप ने भी स्थान सेवा स्थान चेंज कर दिया। तो सेवा स्थान कोई सूक्ष्म बतन में होता है या साकार सृष्टि पर होता है? सेवा स्थान तो सूक्ष्म बतन में थोड़ी सेवा की जाएगी, साकार सृष्टि की बात है। तो जरूर साकार सृष्टि में ही ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करती है। मम्मा बाबा भी इस समय प्रवेश करके बच्चों में पाठ बजा रहे हैं, जैसे सुबह में प्रवेश करके पाठ बजाता है। तो ब्रह्मा की सोल पढ़ाई भी पड़ती है, लेकिन कृष्ण के रूप में, कृष्ण बच्चा। और फिर कृष्ण जब बड़ा होता है, समझदार हो जाता है, संपन्न स्टेज वाला हो जाता है, तब उसे कहा जाता है लक्ष्मी नारायण। इसलिए बोला कृष्ण सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी। चंद्रवंशी राधा तो सूर्यवंशी कृष्ण के यहाँ आना देते तो बड़ी मुझ हो गई। किस बात की मुझ हो गई? कि हम ब्राह्मण तो समझते थे कि सत्युग में एक ही कुल एक ही वंश। कौन सी दो पाजी? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। जो बाबा आकर कितने धर्मों की स्थापना करते हैं? तीन धर्म की स्थापना क्यों बाबा करता है? ये बाप नहीं, जो बाबा, ये भी फर्क है। जो बाप जब हम कहते हैं या अगस्तवाणियों में जब आता है, जो बाप बोले, ब्रह्मा बाप बोले, जो बाबा बोले, इस तरह अलग अलग करके बोलने वाला, हिच्चे हिच्चे करके बोलने वाला कोई चरिया हरिया नहीं है। इधर चाहे तब वैसे ही बोलता रहे, या मुर्गी में जैसे बोलते हैं माँ पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, फिर बोलते रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, तो अलग अलग करके क्यों बोला? माँ पिता अलग बोल दिया, बाप दादा अलग बोल दिया, फिर रूहानी बाप अलग बोल दिया, ऐसे क्यों कहा? अलग अलग कोई पाठ बजाने वाले व्यक्ति तो होने चाहिए ना, सब तो बोला है। तो जो बाप जब बोला जाता है तो वो है आत्माओं का बाप, वो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, और हम उसके भाई भाई बच्चे हैं आपस में, भाई बहन भी नहीं, क्योंकि बिंदु आत्मा में स्त्री पुरुष का सवाल नहीं पैदा होता। वो हमारा बाप और हम बिंदु बिंदु स्टेज में अपने बाप के बच्चे भाई भाई, दूसरा कोई संबंध बनता नहीं। दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब वो बिंदु साकार में आता है। तो दूसरे संबंधों में एक मुख्य संबंध है बाबा ग्रैंड फादर का। माना साकार में जब तक शिव बाबा प्रवेश न करे तब तक वो ग्रैंड फादर अर्थात बाबा नहीं कहा जा सकता। इसलिए मुर्गी की महावाक्य में बाबा ने क्लैरिफिकेशन खुद ही दे दिया, साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। अगर साकार का मेल नहीं है ज्योति बिंदु का, सुप्रीम सोल का, तो वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, बाबा नहीं। क्लास में आए थे तो बात नहीं छुट्टी दे दूंगी। तू बैठी क्या क्लास की छुट्टी रखी हुई? तो आत्माओं का बाप, आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, और ब्राह्मणों का बाबा शिव बाबा, तो जरूर साकार हुआ। तो शिव बाबा जो है वो आत्मा अलग पार्ट बजाने वाली, और कृष्ण की सोल माना दादा लेखराज की सोल वो अलग पार्ट बजाने वाली। उनमें पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर कौन है? इन दोनों सोल के बीच में अभी इस समय वर्तमान में पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर कौन है और पढ़ने वाला स्टूडेंट कौन है? कौन सी आत्मा को कहेंगे स्टूडेंट और कौन सी आत्मा को कहेंगे टीचर? सुप्रीम टीचर। शिव बाबा है सुप्रीम टीचर, वो है क्लेरिफिकेशन देने वाला, क्योंकि टीचर का काम होता है प्रोज और पोएट्री का क्लेरिफिकेशन देना। शिव बाबा बाप टीचर सदगुरु तीन बनकर के आता है ना, और ये भी बताया है कि एक ही तन के द्वारा बाप टीचर सदगुरु बनता हूँ और एक ही बार आता हूँ। ऐसे नहीं कि यदि के आदि में भी बाप टीचर सदगुरु था, फिर मत में दादा लेखराज के द्वारा भी बाप टीचर सदगुरु था, नहीं। उस स्वरूप के द्वारा उसको तो माँ का पार्ट बजाया, माता के रूप में प्यार दिया, बच्चों को पालना दी, ऐसा गहरा प्यार दिया जिस गहरे प्यार को अब बच्चे याद करेंगे। क्या हमने उस प्यार की पालना का गलत फायदा उठाया, बहुत पश्चाताप करेंगे। अब तो प्यार हमको नहीं मिल सकता। तो वो ब्रह्मा माने बड़ी माँ का प्यार था जो दुनिया में और कोई माँ नहीं दे सकती, लेकिन बाप पीछे सदगुरु का पास नहीं था। बाप का काम होता है वर्षा देना। अगर बाप वर्षा न दे बच्चे को तो फिर बाप का एक है वर्षा कौन सा है? कोई ईंटों के सुखधाम और शांति धाम का वर्षा नहीं है। ईंटों के बनाए हुए सुखधाम शांति धाम का वर्षा देने आया हुआ नहीं। सुखधाम का वर्षा माना परमात्मा बाप ज्ञान के आधार पर हमारी ऐसी स्टेज बना देता है कि इस दुख की दुनिया में रहते हुए भी हम हमेशा अपने को सुखी महसूस करें, सुखी महसूस न करें। माना ये तब होगा जब देहधान से मर जाए। जब तक आत्मा देहधान में है तब तक दुख फील कर सकती है। देहधान से परे हो जाएगी तो दुख सुख से भी परे होगा। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव हमको यहाँ करना है या शरीर छोड़ करके वहाँ करना है? अव्यक्त वाणी है तो बाबा ने बोला हुआ है कि तुम बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का यही अनुभव करना है। तो ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। वो ज्ञान की पराकाष्ठा बनाने वाला कोई गुरु भी चाहिए, टीचर भी चाहिए। तो वो टीचर है सुप्रीम सोल के बाबा, और पढ़ाई करने वाली सोल है इस समय कृष्ण की सोल, ब्रह्मा की सोल। वो दो रूप में पार्ट बजाती है, जिसके लिए मुरली में रोज बोला जाता है। लास्ट में क्या बोलते हैं? मुरली तो अभी भी सुनाई जा रही है ना, एडवांस पार्टी में भी मुरली सुनाई जा रही है, तो बेसिक नॉलेज में भी मुरली बोल सुनाई जा रही है। एडवांस में उसका अर्थ एडवांस हो जाता है। तो जो मुरली सुनाई जाती है उसके अंत में कौन सी बात आती है? यादगार वाली बात आती है ना, हर मुरली में आती है। तो उसमें आया है माता पिता बाप दादा। तो क्या माता पिता बाप दादा अभी नहीं है क्या? बाप दादा कंबाइंड कहेंगे या माता पिता को कंबाइंड कहेंगे? बाप दादा है कंबाइंड पार्ट बजाने वाले, माना बाप राम बाप, चाहे निराकार चाहे साकार। निराकार के बगैर साकार का कोई अस्तित्व नहीं, और साकार के बगैर निराकार को कोई पहचान नहीं सकता। तो निराकार या साकार राम बाप, और दादा माने कृष्ण की सोल, बड़ा भाई। ये दोनों सोल एक ही साकार स्वरूप में जब कंबाइंड होकर के पार्ट बजाती हैं तो उनको कहा जाता है बाप दादा। और माता पिता, माता पिता शब्द जब बोला जाता है तो स्त्री पुरुष ये इंगित होता है। माता कहा गया माना स्त्री चोला, और पिता कहा गया माना पुरुष चोला। तो उन माता पिता में पिता का पार्ट भी है और माता का भी पार्ट, क्योंकि दोनों ही रुद्र माला की मणके हैं, सख्त मणके। माला जब बनाई जाती है तो कुछ मणके राइट साइड में और आधे मणके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के मणके और राइट साइड के मणके। लेफ्ट हिस्ट को कंट्रोल करने वाला बाप और राइट हिस्ट को कंट्रोल करने वाली माँ। झाड़ के चित्र में क्या दिखाया? झाड़ के चित्र में आजू बाजू में जड़ों की ऊपर बच्चे बैठे हुए और बीच में माता पिता बैठे हुए। तो पिता को किस तरफ, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में बैठे हुए दिखाया गया? लेफ्ट साइड में पिता को दिखाया गया, जहाँ ब्रह्मा बाबा का चित्र रखा हुआ है। पिता तो किसी का रखना ही था। इसका मतलब ये नहीं है कि पिता के रूप में संसार में गॉड फादर के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला कोई ब्रह्मा का पार्ट हो, नहीं, वही ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है कोई ब्राह्मण बच्चे में। तो वो पार्ट जिस समय चित्र बनाया गया वो तो व्यक्तित्व नहीं हो सकता, वो तो बाद का व्यक्तित्व है जो संसार में प्रत्यक्ष होना है। जिसके लिए बाबा ने बोला तुम बच्चे टेलीविजन में देखेंगे कि बाबा मुरली चला रहे हैं, उनकी आवाज भी सुनेंगे। तो वो बाप का पार्ट भी और साथ में फिर माता का भी पार्ट। माता को रैकिस बच्चों की तरफ दिखाया गया राज्य जो जड़े हैं, डालियां हैं, वो सब भारतीय धर्मों की है। लैसिक जो जड़े हैं, जो लैसिक डालियां हैं, वो सब विदेशी धर्मों की है, विधर्मियों की है, विपरीत धर्म वालों की। तो माँ जिन बच्चों को कंट्रोल करती है वो बच्चे होते हैं इसमें ही बच्चे, और जो बच्चे इसमें ही माँ के कंट्रोल में कंट्रोल नहीं होते उनको फिर बाप कंट्रोल करता है, तो वो है विदेशी बच्चे। टोटल विदेशी और टोटल विधर्मी। अब ब्राह्मण की दुनिया में विधर्मी और विदेशी कहाँ से आ गए? अगर ब्राह्मणों की दुनिया में विदेशी और विधर्मी आत्माएं कन्वर्ट होकर के नहीं आएंगी, शूटिंग पीरियड में नहीं आएंगी, तो 2500 वर्ष का जो ब्राड ड्रामा चलेगा द्वापर और कलयुग में वहां भी कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं में से दूसरे दूसरे धर्मों का फाउंडेशन लगता रहा है। हमेशा हिंदू ही कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में गए हैं, दूसरे धर्म की आत्माएं कभी हिंदू ही बनी, और हिंदू बनना भी चाहे तो हिंदुओं ने उनको कभी स्वीकार नहीं किया। ये तो लास्ट में एक ड्रामा प्लान अनुसार ऐसा एक धर्म बना हुआ है आर्य समाज, जिसमें ये लूज हो जाती है कि कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी देश वाला हो, आकर के हम उसको हिंदू बना लेंगे। माने उनको क्वालिटी क्रिएट करने की परवाह नहीं है आर्य समाजियों को। वो क्या चाहते हैं? हमारी नवनीति बढ़ जाए, नंबर बढ़ जाए, हमारी वोटिंग लिस्ट बढ़ जाए, क्योंकि अंत में तो आर्य समाजियों का राज्य चलना है। भारतवर्ष में अभी नास्तिकों का राज्य तो अभी नहीं आया, आएगा। इसलिए मुरलीम रावण बोला है कि लास्ट में कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बनाए देंगे, तो हो सकता है, क्योंकि सब धर्मों ने तो दिल्ली के तख्ते पर राज्य किया, क्योंकि दिल्ली है सबकी अम्मा। इसलिए बोला दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन। सारे भारत का माहौल देखना हो तो दिल्ली का देख लो, सारी दुनिया की नजर कौन से शहर पर लगी हुई है? दिल्ली के ऊपर लगी हुई है। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसने दिल्ली के तख्ते पर राज्य नहीं किया हो। और बाप का दिल कौन सा शहर है? दिल्ली ही बाप का दिल। तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष से लेकर के और अंत तक बाप का दिल जब दिल्ली है तो बाप का कार्य भी कहाँ चलेगा? बाप दादा ने कहाँ स्थानांतरण कर दिया? दिल्ली। और पहली बात है पढ़ाई शांति के स्थान में होती है, तो माउंट आबू में हुई पढ़ाई, और पढ़ाई के बाद फिर क्या होती है? लड़ाई। कुरुक्षेत्र का मैदान कौन से शहर के पास है? दिल्ली के पास। कहाँ की यादगार? इसी समय महावारी महाभारत युद्ध, इसी समय की बात है ना। तो पढ़ाई के बाद है लड़ाई, और लड़ाई के बगैर राजा ही नहीं मिलती, चाहे वो धर्म युद्ध की लड़ाई हो और चाहे वो स्थूल हिंसक लड़ाई हो। स्थूल हिंसक लड़ाई से जो राजा स्थापन की हुई वो क्षण भंगुर राजा ही, और जो धर्म युद्ध के द्वारा, जैसे बाबा ने बोला हुआ है गेट वे टू हेवन इज महाभारत, यानी महाभारी महाभारत लड़ाई करके गेट खोलेगी। तो इस जो इस महाभारी महाभारत धर्म युद्ध से पसार नहीं होगा, वो स्वर्ग के गेट में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई कहे कि हम क्षत्रिय नहीं बनेंगे, हम तो राजा बनेंगे, तो जब युद्ध ही नहीं करोगे तो राजा कहां से बन जाओगे? जब बाबा आकर के तीन धर्मों की स्थापना करता है तो हम किसी एक धर्म को निष्कर्ष क्यों साबित करें? जो ब्राह्मण बनते हैं वही क्षत्रिय बनते हैं त्रेता में, और जो क्षत्रिय बनकर के युद्ध करते हैं माया से, मायावियों से, वो सिर्फ देवता बनते हैं। फेल हो जाते हैं तो क्षत्रिय के क्षत्रिय रह जाते हैं। अगर युद्ध में पसार हो गए, पास हो गए, तो फिर चैन की बंसी बजाते हैं, शत्रुवंशी बंसी शत्रुघ्न मौत। तो हमको सूर्यवंशी पहले बनना है, सिर्फ चंद्रवंशी बनकर के रह जाना, हमको बनना तो हमारा लक्ष्य तो सूर्यवंशी बनने का है ना। तो जब सूर्यवंशी बनने का लक्ष्य है तो जरूर परमात्मा बाप जो हमको सूर्यवंश चंद्रवंश और ब्राह्मण धर्म की ब्राह्मण वंश की स्थापना कराए रहा है, उन तीनों प्रकार के धर्मों को समझना है। तीनों प्रकार के वंश को समझना है तो यहाँ कैसे ब्राह्मणों की दुनिया में वो वंश स्थापन हो रहे हैं। ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्राह्मण की परिभाषा क्या? मुख्य जो पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करे वो ब्राह्मण, और पवित्रता के लिए पुरुषार्थ ही न करे मन का वाचा या कर्मा तो ब्राह्मण के लिए कुछ नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों को ही देवता बनाया जाता है। ब्रह्मा के द्वारा शस्त्र मशीनरी चली शूद्रों को ब्राह्मण बनाने की। शिव बाबा किसको पढ़ाता है, ब्राह्मणों को पढ़ाता है या शूद्रों को? शिव बाबा ब्राह्मणों को पढ़ाता है, शूद्रों को पढ़ाई नहीं पढ़ाता। तो शिव बाबा बाबा माना साकार, और शिव बाबा जब पढ़ाई पढ़ाएगा, राजयोग सिखाएगा, राजा बनना सिखाएगा, तो किसी देहधारी के अधीन बनना नहीं सिखाएगा, सिखाएगा। जब ज्ञान सूर्य उगता है तो क्या सितारों का प्रकाश टिमटिमाता है? सितारों के प्रकाश से रोशनी का कोई महत्व रहता है? तो ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर बिना, ये जो देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा अज्ञान अंधेरा फैलाया जाता है ताकि ज्ञान सूर्य छुपा रहे और हमारी पूजा होती रहे, तो वो हो नहीं सकता। बादल बिखरेंगे और सूर्य निकलेगा, माया के बादल होते हैं। जो माया के बादल होते हैं वो बहुत काले काले होते हैं, उनमें पानी नहीं होता, माना ज्ञान जल नहीं होता। घुमाड़ा बहुत मचाएंगे, गरजेंगे बहुत, लेकिन बरसेंगे नहीं। और ज्ञान सागर के बच्चे तो जरूर बरसने वाले होंगे, ज्ञान की बरसात से जरूर संदास पैदा होगी। एक गंगो की झुलसी हुई है, उन भटकी हुई आत्माओं को राह बताने का काम बाबा के बच्चों का है। तो जब राह बताने का काम बाबा के बच्चों का है तो उन्हें तीर्थ यात्रियों के पंडे कौन हुए? बाबा के बच्चे हुए ना। पंडा तो एक है, लेकिन पंडे के सहयोगी भी तो पांडव हैं। पंडे के बच्चे क्या हुए? पांडव। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण एक मात्रा बढ़ गई ना, विष्णु की औलाद वैष्णव, जिन भगवान की जो औलाद है या फॉलोअर है वो जैन, एक मात्रा बढ़ गई ना। तो ऐसे ही पंडे की औलाद पांडव, तो जो पांडव हैं उनका काम भी बहुत बड़ा है, बहुत जिम्मेदारी का है। ऐसा न हो कि अजामिल के मुआफिक या अहिल्या के मुआफिक पार्ट बजाने वाले बन पड़े, कि जो आया किसी की समझ में आया या ना आया, किसी की बुद्धि में बैठा या ना बैठा, चलो तीर्थ यात्रा पर। पंडित लोग क्या करते हैं? चलो तीर्थ यात्रा पर।
चाहिए कि एक बार निश्चय बुद्धि बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है किसी धर्म की जो उनको हिला सके। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी जो एक बार बन गए तो दुनिया की किसी संप्रदाय में ये ताकत नहीं जो उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को फिर अपने धर्म संप्रदाय में कन्वर्ट कर सके। तो ऐसे ही एडवांस पार्टी के जो टीवी के बने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, माँ और बाप दोनों के बच्चे, क्या कोई पूछे तुम्हारे माता पिता कौन है? और अपनी अम्मा का नाम बताए कि हम ब्रह्मा कुमार बड़ी अम्मा के कुमार है। भाई बाप का नाम भी बोलिए, बाप का नाम भी बताओ ना। तो नदारद चुप, तो इससे लोग क्या समझेंगे? लोग क्या समझेंगे? बाप नहीं है ना, तो इसको बरसात का कुछ मिलना नहीं। लावारिस है, यतीन है, तो अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे। आज भी भले कितना भी ज्ञान का प्रचार प्रसार हो गया है, लेकिन जो होना चाहिए तो नहीं हुआ कोई, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी ही अभी सुप्रीम सत्ता को नहीं पहचान सके। वो सुप्रीम सोल कैसे इस शक्ति पर आकर के विश्व की वास्ता ही हमको प्रदान करता है, नंबर वार विश्व का वास्ता बनाता है, इस बात को अभी नहीं जान सके। ये बात बच्चों को पहले जाननी है। बाबा के बच्चे जो 108 बच्चे हैं, क्योंकि राजयोगी है ना, राजयोगी राज को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? राजयोगी ही तो राजा बनेंगे। हाँ, पुरुषार्थ करते करते कोई फेल भी हो जाता है, तो जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो राज आना चाहिए तो कम से कम राज फैमिली में तो आ जाएंगे। 16108 की राज फैमिली है गोप गोपी। गोप गोपी माना गुप्त पुरुषार्थी, गुप्त रूप में जिन्होंने परमात्मा बाप के साथ साकार में संबंध जोड़ लिया, उनका दैन शास्त्रों में हुआ गोप गोपी। तो वो जो गुप्त पुरुषार्थी है, जो राज घराने में आने वाली आत्माएं हैं या जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाली आत्माएं हैं, उनकी स्टेज ज्ञान में क्या होनी चाहिए? कोई पूछे तुम्हारा माता पिता कौन, तो सत्य में आ जाएंगे, जवाब नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी आते हैं, कोई भी नए तुम्हारे पास आते हैं तो उनसे पहले फार्म भरवाओ। उस फार्म में एक कालम दिया हुआ है, यहाँ तुम किससे मिलने आए हो। तो अगर निश्चय बुद्धि होगा तो क्या कहेगा, हैं? बाप से मिलने आए, क्यों आए हो? बाप से धंधा लेने आए, पति से पावन बनने आए। बाप का धंधा क्या है? पतितों को पावन बना, चाहे वो धरती के संग के रंग से बने, चाहे और कोई कर्मेंद्रियों के संग के रंग से बने, पावन तो जरूर बने। कोई दूर के संबंध से बनेंगे और कोई नजदीक के संबंध से बने, कोई क्लोज कॉन्टेक्ट में आकर के बनेंगे और कोई दूर से बने। लेकिन अतीत से पावन 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से सबको बनना, वो सर्व का सदगति दाता बाप का पार्ट है। पार्ट तो साकार सृष्टि पर ही होता है, सूक्ष्म मतलब में कोई पार्ट नहीं होता, मूल मतलब में कोई पार्ट नहीं होता। तो पहली पहली बार कि बाबा के पास जो भी बच्चे आए वो निश्चय बुद्धि बच्चे, ताकि विजयंती की लिस्ट में आ जाए। बाबा नहीं चाहता कि मेरा कोई बच्चा हार जाए माया, माया से हार खप खाएंगे जब देहदारियों की मत पर चलेंगे। जैसे देहदारी कान पकड़ के घुमाना चाहे वैसे घुमा दे। अरे 63 जन्म तो हम देहधारियों की मत पर चलते चलते हमारी ये हालत हो गई, अब इस लास्ट जन्म में भी हम देहधारियों की मत पर चलेंगे। हम किस पर चलेंगे, श्रीमत पर चलेंगे या मनुष्यों की मत पर, अमन मत पर चलेंगे? हमें चलना ही है श्रीमत पर, श्रीमत से ही हमारी सदगति होगी, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। दुर्गति का मतलब क्या, पद भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं आएंगे, स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन सेकंड नारायण या थर्ड नारायण या फोर्थ या एट्थ नारायण की वारसदार बनेंगे, उसकी प्रजा में जाएंगे या उसके राजघराने में पहुंचेंगे। लेकिन जो फर्स्ट नारायण है, डायरेक्ट बाप से प्राप्ति करने वाला, जो सारे विश्व का पिता है, सर्व मनुष्य मात्र का पिता, प्रजा पिता, आदम एडम को हर धर्म में मान्यता प्राप्त है, उसके बच्चे डायरेक्ट मिलेंगे। तो क्या बनना, अच्छा ऑलराउंड पार्टधारी बनना है या हाफ राउंड पार्टधारी बनना है? ऑलराउंड पार्टधारी बनना है तो जरूर हमको टॉप पर पहुंचना पड़ेगा। ऋषि यादगार है गुरु शिखर, चोटी की ब्राह्मण है ना, तो जब हम चोटी के ब्राह्मण हैं तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर भुजाओं की स्टेज में आना क्यों शुरू करें? पूरे 84 जन्म लेने वाले को देवता कहा जाता है। अगर एक भी जन्म कम हो गया भले सचिव में आवेगा, परंतु देवी देवताओं की पक्की लिस्ट में नहीं है। अब हम बच्चों को देवी देवता सनातन धर्म का पक्का बनना है। ये भी पूर्व जन्मों की कोई हिसाब किताब है? हिसाब किताब मनुष्यों के साथ बनते हैं या सुप्रीम सोल के साथ बनते हैं? किसके साथ बनते हैं? मनुष्य आत्माओं के साथ हिसाब किताब है। तो मनुष्य आत्माओं में भी प्रजापिता वाली आत्मा, रामकृष्ण वाली भी आत्मा है। जैसे गीता है, जन्म जन्म का साथ है, निभाने को 84 बार हमने जन्म लिए, समय की गीत है वो तो नहीं जानते हैं, इसलिए 100-100 बार बोल दिए, वो भी ठीक है। इसलिए बाबा ने कहा फार्म बढ़ाओ, फार्म उनसे लिखवाओ, तुम यहाँ किससे मिलने आए हो, किस लिए आए हो? तो हम फार्म बढ़ाने की हमको नौबत क्यों आए? हम तो बाबा के बच्चे पहले ही बेसिक नॉलेज में बने पड़े हैं। किसके बच्चे हैं? हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम कोई देहधारी के बच्चे नहीं हैं।
देह अभिमान में मान शान में आने वाले के बच्चे नहीं हैं। हम तो उस बाप के बच्चे हैं जो निराकारी है, निरहंकारी है और निर्विकारी है। दुनिया भले कुछ उसको बोलती रहे, इसलिए मुरली ने बोला कि दुनिया वाले कहेंगे कि ये बाप नहीं है। भक्ति मार्ग में शंकर का चित्र ऐसे रख दिया है जैसे रावण, क्योंकि उनको तो बेचारों को मार मिलनी है धर्मराज बाप की, और हम बच्चों को तो प्यार मिलना है। हम बाप के प्यारे बच्चे हैं, हम कोई मार खाने वाले सौतेले बच्चे नहीं हैं। तो जब हम प्यारे बच्चे हैं, मातेले बच्चे हैं, तो जरूर माता पिता दोनों को पहचानने वाले होने चाहिए। हमारी माता कौन, हमारा पिता कौन। जो गायन है तुम माता पिता हम बालक के, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, ले लो दुआएं माँ बाप की, तब उतरेगी गठरी पाप की। तो श्रेष्ठ जन्म से हम पापी तो हैं ही, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद और पापी बन जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अज्ञान काल में जो पाप कर्म किया उसका एक गुना बोध करता है, और ज्ञान में आने के बाद अगर उलट कर्म किया और बाप से सच्चे होकर के नहीं चले तो
100 गुना पाप का बोध करता है। वो तो हुआ बेसिक नॉलेज, और फिर चलती है एडवांस नॉलेज, और गहरी नॉलेज में जब हम पहुंचे तो अगर वाणी में बोलना शुरू किया अब है 1000 गुना बोझ। अगर सच्चार होकर के नहीं चलते तो ये कोई कामन सत्संग नहीं है, जैसे दुनिया में कामन सत्संग चलते हैं। यहाँ प्राप्ति भी 1000 गुनी है, लाख गुनी है, तो घाटा भी 1000 गुना लाख गुना, अवस्था बिल्कुल गिर जाएगी। इसलिए अभी तो लाख समय है, जिसको जितना जो कुछ बनाना है वो बना सकता है, तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। बाबा ने बोल दिया है वाणी में, अव्यक्त वाणी में भी बोला हुआ है, ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी असुर घुस नहीं सकेगा सिवाय पांडवों को। तो क्या बाबा के महावाक्यों पर हमको विश्वास नहीं है? निश्चय नहीं है, निश्चय होना चाहिए। ये मधुबन शीशे का महल बन जाएगा। शीशे का महल, शीशे में क्या होता है? शीशा माने आरती, ज्ञान का दर्पण, बड़े से बड़ा दर्पण है बाप। वो तो मधुसूदन बाप ही है जो मधुबन में रहने वाला है। तो मधुबन है शीशे का महल, उस मधुबन में कोई भी अपने चेहरे को छुपाए नहीं सकता। बाप के पास वो ही रह सकेंगे जो पूरे मरे हुए हो। बाबा ने महावाक्य तो सारे ही बोल दिए। किसी से मरे हुए? देह अभिमान, देह के संबंधियों की याद से मरे हुए। ये देह भी हमारी दुश्मन है, और देह के संबंधी भी इस दुनिया में दुश्मन है। लौकिक दुनिया के भी दुश्मन है, तो अलौकिक दुनिया के भी। लोहे की जंजीर है तो अच्छी नहीं होती, किसी को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सोने की जंजीरों में बंधना अच्छा लगता है क्या? ज्यादा खतरनाक जंजीर कौन सी है, लोहे की जंजीर या सोने की जंजीर? सोने की जंजीर और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ज्यादा कीमती होती है, उसमें जास्ती मोह लग जाता है। तो अब हमें तो हर प्रकार के बंधन से परे होना है, लौकिक बंधनों से भी परे होना है, अलौकिक बंधनों से भी परे होना है। उन संबंधों में फरिश्ते नहीं आते, हमको तो बनना है फरिश्ता। फर्श की दुनिया वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं, हमारा तो सिर्फ ज्ञान का रिश्ता है, और ज्ञान आता है भगवान से, कोई मनुष्य से ज्ञान आता नहीं है। बाकी बातें करने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, अनेक प्रकार की बातें बनाएंगे, जिन बातों का कोई आगा पीछा नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई आधार नहीं, तो हम कच्चे कान वाले बच्चे नहीं है। हमारे तो मजबूत कान है, ऐसे मजबूत कान है कि इन कानों में बाप की आवाज ही सुनाई पड़ेगी। शैतान की आवाज हम एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे। अंदर से समझ लेना है कि श्रीमती के खिलाफ बात हो रही है,
बाकी कोई सामने अपोजिशन करने की बात नहीं। कोई कुछ बोलता है तो हमारा क्या जाता है, अपना मुंह खराब कर रहा है। कोई व्यक्तिगत किसी की बुराई कर रहा है तो अपना मुंह खराब कर रहा है। बाबा ने तो किसी मुरली में नहीं सिखाया कि किसी की व्यक्तिगत बुराई करो। इसलिए बाबा ने मुझे बोला, धूतियां ऐसे ऐसे खराब काम करती हैं कि झूठी बातें सुनाकर दूसरों की दिल खराब कर देती है। तुम बच्चों को सुनी सुनाई बातों पर कब नहीं चलना चाहिए। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। तो अब जो कुछ मुरली कहती है हमें उन बातों पर मन चिंतन मंथन करना है। शास्त्रों की बात भी नहीं सुननी। शास्त्रों में भी लिखने वाले कौन, मनुष्य, मनुष्य गुरु। मनुष्य तो विकारी ही होता है। विकारी जो कुछ लिखेगा जो कुछ बोलेगा वो स्वार्थ से भरा पूरा होगा। स्वार्थ से कभी परमार्थ सिद्धि नहीं होती। और शिव बाबा जो कुछ बोलेगा, शिव बाबा को तो अपना रथ ही नहीं है, भी रथ तो उस रथ से ऐसे पार्ट बजाता है कि जैसे मेरा रथ है ही नहीं। ब्रह्मा बाबा को इतनी खांसी होती रही, क्या शिव बाबा ने सहयोग कर दिया है? नहीं किया, क्योंकि शिव बाबा एक के साथ सहयोग कर दे तो दूसरों के साथ भी सहयोग करे, फिर तो पक्षपाती हो गया। तो शिव बाबा न किसी के पाप कर्म में सहयोगी न किसी के पुण्य कर्म में सहयोगी। जिस तन में प्रवेश करता है उसके लिए भी नहीं, हाँ जो जितनी हिम्मत करता है उतना मददगार। तो निश्चय पत्र को जरूर लिखना है और जरूर लिखाना है। पार्टी लाने से पहले पहले एक एक को देख लेना है ध्यान से। इसलिए बाबा ने इतना सख्त होकर के मुरली में बोल दिया, पहले पहले बाप का परिचय दो, त्रिमूर्ति पर समझाओ। अगर बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा है तो रवाना कर दो, ये हमारे कुल का नहीं है। क्यों, बाप को ही नहीं पहचाना तो डायरेक्ट बाप का बच्चा कैसे बनेगा? फिर तो देहधारी धर्म गुरुओं का बच्चा बनेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ नारायण का बच्चा बनेगा या बाप का बच्चा बनेगा, किसको फॉलो करेगा? जो जिसका बच्चा होगा वो उसी को फॉलो करेगा। प्रजा को बच्चा कहा जाता, राजा की प्रजा किस रूप में होती है? बच्चों के रूप में होती है। अभी यहाँ स्थापना हो रही है, हर आत्मा को अभी ये रियलाइजेशन होगा, क्योंकि रियलाइजेशन कोर्स भी हमारा चल रहा है। एडवांस कोर्स माना रियलाइजेशन कोर्स। आत्मा रियलाइज करे कि मैं किसका बच्चा हूँ, क्राइस्ट का बच्चा हूँ, नानक का बच्चा हूँ, रामकृष्ण का बच्चा हूँ या डायरेक्ट शिव बाबा का बच्चा हूँ। रामकृष्ण का फॉलोअर बनना भी नहीं अच्छा है, क्यों? क्योंकि रामकृष्ण उनके नाम तो रवि भाई ने पहले सजेस्ट करके भेज दिए हैं, बाकी के नाम नहीं लिखे उन्होंने लेटर। ये पार्टी किसने रेडर है या डायरेक्ट किसने है, बेबी किसने है? कौन सी सिंधु माता है?
सिंधु माता
ने आपको पंडा बना करके भेजा है, तो आपने तो सबको कोर्स नहीं लिया होगा।
सिंधु माता ने लेकिन नाम तो नहीं
भरत भाई से। अच्छा, तो भरत भाई अभी तक पहले से लेकर के अब तक आपको निश्चय बुद्धि नहीं बना सकी क्या? नहीं, सरकार क्यों नहीं, जब बाबा ने मुरली में बोला हुआ है तो मुझे सब लिखवा लेना चाहिए। मुरली में बोला है बाबा ने, हाँ तो जो कथनी में है वो करनी में भी है। हाथ से करनी होती है और मुख से कथनी होती है। दे दीजिए, दे दीजिए सागर, दे दीजिए। बाबा से बातचीत करना भी मुरली है। अब बेटवाने में बाबा ने बोला है बातचीत करना मुरली नहीं है क्या? हमारे बाबा की वाणी कोई ठहरी हुई वाणी थोड़ी है, कोई शास्त्र थोड़ी है।
बातचीत करना वो और अच्छा है, उसमें पर्सनल जो खामियां हैं अंदर वो भी बाहर आ जाती है। तारीफ और लगाई